सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज के इस विशेष भक्ति सत्संग का अब हम आरंभ करेंगे। सत्संग के आरंभ में ही भाव भक्ति के पुष्पों की दिव्य सुगंध सर्वत्र फैली है, उसकी दिव्य अनुभूति लेंगे। इस दिव्य सुगंध सहित साक्षात जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का तत्व अवतरित हो रहा है। इस भाव से श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होंगे। श्री कृष्ण गोविंद का आनंदमय तत्व ग्रहण करते हुए उनके श्री चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हम आपके चरणों में संपूर्ण शरण आए हैं। आज के इस भक्ति सत्संग के माध्यम से हमें पूर्णतः कृष्णमय करें। हे मनमोहन, हमारे अंतकरण को केवल और केवल आपका ही ध्यास लगने दे। हे श्रीरंग, आप ही हमें अपनी भक्ति में रंग दे। हमारे अंतकरण को केवल और केवल आपका ही ध्यास लगने दे। हे मनमोहन, हमारी देह पर, मन पर, चित्त पर केवल आपकी ही और आपकी ही भक्ति का रंग चढ़ने दे। हे कन्हैया, आप ही हमें भक्तिमय बनाकर आपके श्री चरणों में समा ले। हे भगवान, यही प्रार्थना सुमन आपके श्यामवर्ण तेजस्वी एवं दिव्य श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। श्रीहरि को अत्यंत प्रिय तुलसी दल उनके चरणों में भक्तिपूर्वक समर्पित करेंगे। तुलसी दल भक्ति एवं त्याग का प्रतीक है। आज के इस भक्तिमय सत्संग के आरंभ में ही भगवान की स्तुति कर। इस सत्संग में अवतरित श्री कृष्ण तत्व अधिकाधिक जागृत होने के लिए उनका आवाहन करेंगे। अपने मन का भक्तिपूर्वक त्याग करते हुए मनरूपी तुलसी दल हम त्रिलोकीनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण जी की श्लोक वंदना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भक्ति में डूबने के लिए आए आप सभी कृष्ण भक्तों को कृष्णमय नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण धर्म संस्थापना के आराध्य देवता हैं। 16 कलाओं से युक्त और 100% श्री विष्णु तत्व से युक्त श्री विष्णु का पूर्णावतार अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात साक्षात जगतगुरु लीलाधारी श्री कृष्ण के अवतार धारण महोत्सव का दिव्य दिन सभी कृष्ण भक्त जीवों के लिए ये कृष्णमय आनंद का पर्व ही है। श्री कृष्ण रंग में रंग जाने का, श्री कृष्णमय होने का ये एक अवसर है। इस गोकुलाष्टमी में श्री कृष्ण तत्व अधिकाधिक कैसे अनुभव करना है, वह चराचर में एवं स्वयं के अंतर में कैसे अनुभव करना है, ये हम इस विशेष भक्ति सत्संग में अनुभव करेंगे। इस कारण गोकुलाष्टमी के पहले ही हम सभी के अंतर्मन पर भक्ति का दिव्य रंग चढ़ने वाला है। वह सभी अनुभव करेंगे। भक्ति सत्संग के माध्यम से श्री कृष्ण का सर्वव्यापी एवं आनंदमय तत्व अधिकाधिक ग्रहण करेंगे। अपने रोम रोम में, देह की नस नस में, हड्डियों में, रक्त की एक एक बूंद में वो कृष्ण तत्व अनुभव करेंगे। आज के इस भक्ति सत्संग में साक्षात लीलाधारी श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रत्यक्ष द्वापर युग का वातावरण अवतरित हुआ है। उस द्वापर युग की अनुभूति लेकर हम श्री कृष्णमय हो जाएंगे। जो अखिल मानव जाति के और सभी प्राणी मात्रों के जीवन दाता है, सर्वात्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उन लीलाओं का भावमय अवलोकन करने का आज हमें सुवर्ण अवसर मिला है। भवरोग की जो औषधि है, जो कानों को और मन के लिए परम आह्लाददायक है, ऐसे भगवान का गुणवर्णन करते हुए हम स्वयं को भी पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। गंगा जल समान पवित्र करने वाले इस पवित्र श्री कृष्ण लीलाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति लेकर हम भी पवित्र हो जाएंगे। आज के भक्ति सत्संग में साक्षात भगवान की दिव्य जन्म लीला तथा उस विषय में भक्तवत्सल भगवान के दैवीय रहस्य उजागर होने वाले हैं। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु को 8वीं बार पृथ्वी पर अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता निर्माण हुई होगी? ऐसी कौन सी स्थिति निर्माण हो गई थी कि भगवान को उस परम परमेश्वर को पुनः अवतार धारण करने जैसे लगा? ये जानने के लिए हम श्री कृष्ण अवतार धारणा के पहले अर्थात श्री कृष्ण के जन्म से पहले की स्थिति का अवलोकन करेंगे। उसके द्वारा श्री कृष्ण अवतार की आवश्यकता प्रत्यक्ष जान लेंगे। उस समय लाखों दैत्यों ने अहंकारी राजाओं का रूप धारण किया था। उनके अनाचार से एवं अत्याचार से संपूर्ण पृथ्वी पीड़ित थी। सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई थी। इस सब से अपनी रक्षा हो, इसलिए पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मदेव की शरण गई। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने खिन्न होकर ब्रह्मदेव को अपने ऊपर आया संकट बताया। ब्रह्मदेव ने पृथ्वी की व्यथा सुनी। पृथ्वी की रक्षा होने हेतु अब एक ही मार्ग था, साक्षात शेषशायी श्री विष्णु की शरण जाना। ब्रह्मदेव, भगवान शिव एवं अन्य देवी देवताओं सहित पृथ्वी को साथ लेकर क्षीरसागर के किनारे गए। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने एकाग्र चित्त से पुरुष सूक्त कहा। तदुपरांत वे अत्यंत व्याकुल होकर जगत पालक श्री विष्णु से स्तुति रूपी प्रार्थना करने लगे। सर्व देवताओं ने भगवान की स्तुति रूप में प्रार्थना कैसे की, वो अब हम सभी अनुभव करेंगे। हे प्रभो, हम सभी आपकी शरण आए हैं। इस जगत की उत्पत्ति का एकमात्र आधार आप ही है। आप में इस विश्व का प्रलय होता है और आपकी ही कृपा से इस विश्व की रक्षा भी होती है। हे नित्य मुक्त भगवान, हे प्रभु, आपने जैसे मत्स्य, कुर्म, नृसिंह, वराह, राम, परशुराम एवं वामन अवतार धारण कर हमारी और तीनों लोकों की समय समय पर रक्षा की, उसी प्रकार अब भी अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करें, उसका भार हल्का करें। हे यदुश्रेष्ठ, हम आपके चरणों में वंदन कर रहे हैं। देवी देवताओं और पृथ्वी द्वारा अत्यंत आर्तता से की गई प्रार्थना में संपूर्ण सृष्टि की व्याकुलता समाई थी। उस आर्त प्रार्थना के उपरांत आकाशवाणी हुई, पृथ्वी के कष्टों की उस परम परमात्मा को पूर्ण कल्पना है। अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान स्वयं शीघ्र से शीघ्र वसुदेव के घर प्रकट होने वाले हैं। हे देवताओं, वे परम परमेश्वर जब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक आप यदुकुल में अंश रूप में जन्म लेकर रहिए। वसुदेव जी के घर स्वयं भगवान पुरुषोत्तम प्रकट होंगे। उन्हें आनंद देने के लिए देवांगनाएं भी जन्म लेंगी। भगवान का प्रिय कार्य करने हेतु स्वयं प्रकाशी तथा सहस्रमुख होने वाले भगवान शेष भी उनसे पहले ही अवतार लेंगे। जिसने संपूर्ण जगत को मोह लिया है वो भगवान की ऐश्वर्यशालिनी योगमाया भी उनकी आज्ञा से उनका लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप में अवतार लेगी। ये आकाशवाणी सुनकर सभी देवी देवताओं और पृथ्वी को भी अपार आनंद हुआ। भगवान ने कंस, चाणूर आदि दुष्टों का संहार करने के लिए एवं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया था। भगवान तो अजन्मा है, उन्हें न तो जन्म है, न आदि और न अंत। ऐसे में उन अयोनि संभव परमात्मा को धरती पर मानवी देह धारण कर अवतार लेना पड़ा। साक्षात परब्रह्म के उस परम चैतन्य एवं उसकी दिव्य शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता मानव में नहीं, अतः उस परब्रह्म ने ही अपने अवतरण की लीला रची। वो दिव्य लीला अब हम प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। उस समय मथुरा यादवों की राजधानी थी। यदुवंशी शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा की देवकी के साथ हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। विवाह होने के पश्चात वसुदेव अपनी नवविवाहिता वधु देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर बैठे। कंस ने उनके रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ली। निकलने से पहले ही वधुवर का मंगल होने के लिए एक ही समय पर शंख, मृदंग एवं दुमदुबिया बजने लगी। घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ चला रहा था। तब मार्ग में उसे संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसे तुम रथ में बिठा कर ले जा रहे हो उस देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये आकाशवाणी सुनते ही कंस अत्यंत क्रोधित हो गया और वह देवकी का वध करने लगा। तब वसुदेव ने उसे समझाया, देवकी तुम्हारी बहन है, तुम्हें देवकी से नहीं अपितु तो उसके 8वें गर्भ से धोखा है, इसलिए उसका इस प्रकार वध करना योग्य नहीं। देवकी को जब पुत्र होगा तब मैं स्वयं तुम्हें लाकर दूंगा। तब कंस ने देवकी का वध करने का विचार छोड़ दिया, परंतु उनके प्रति अविश्वास के साथ साथ अपनी मृत्यु का भय भी था। इसीलिए कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को ही बंदी गृह में डाल दिया। योग्य समय आने पर देवकी ने प्रतिवर्ष एक इस प्रकार 8 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव बड़े कष्ट से उस नवजात शिशु को कंस के पास ले गए। वसुदेव की सत्य से एकनिष्ठता देखकर कंस प्रसन्न हो गया और हंसते हुए बोला, तुम इस बालक को लेकर लौट जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं, कारण मेरी मृत्यु तो तुम्हारे 8वें पुत्र से होगी, यही भविष्यवाणी हुई थी। ये सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर लौट आए, परंतु कंस दुष्ट और चंचल स्वभाव का होने से वसुदेव को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। यहाँ भगवान की प्रेरणा से देवर्षि नारद कंस के पास आए। वे उससे बोले, अरे कंस, गोकुल में रहने वाले नंद इत्यादि गोप, उनकी पत्नी वसुदेव इत्यादि वृष्णिवंशी यादव, देवकी इत्यादि यदुवंश की स्त्रियाँ और नंद वसुदेव, इन दोनों के सभी सगे संबंधी देवी देवता हैं। इस समय जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवी देवता ही हैं। पृथ्वी पर दैत्यों का भार बढ़ गया है, इसलिए देवी देवता अब उनके वध की तैयारी कर रहे हैं। इतना कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। नारद के ये वचन सुनकर कंस को निश्चिति हो गई कि ये यादव देवी देवता है और देवकी के गर्भ से श्री विष्णु ही मुझे मारने के लिए जन्म लेने वाले हैं। इसलिए फिर कंस ने देवकी और वसुदेव को बेड़िया डलवा कर कारागृह में डाल दिया। मृत्यु के भय से वो देवकी की प्रत्येक संतान का वध कर देता था। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बालकों का वध किया। 7वीं बार देवकी गर्भवती थी, तब भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। रोहिणी गर्भवती हुई और शेषनाग बलराम के रूप में अवतरित हुए। यहाँ देवकी के 7वीं संतान की मृत्यु होने की सूचना कंस को मिली। कालांतर में भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान का ही विश्वरूप वसुदेव के मन में अपनी सर्व कलाओं सहित प्रविष्ट हुआ। भगवान का तेज धारण करने से वसुदेव सूर्य समान तेजस्वी दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाती थी, इतने वे तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। विश्व का मंगल करने वाले सर्वात्मक और आत्मरूप भगवान का अंश धारण करने पर देवकी भी अंतर्मन से आनंद अनुभव कर रही थी। देवकी के अंतरंग में भगवान विराजमान हुए थे। उसके चेहरे पर पवित्र हास्य था और उसकी कांति तेजस्वी हो गई। उसकी उस दैदीप्यमान कांति से कारागृह जगमगाने लगा। कंस ने वसुदेव और देवकी पर कड़ी निगरानी रखी थी। अब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, ये सूचना कंस को मिली। सूचना मिलते ही भविष्य में कोई संकट उत्पन्न न हो, इसलिए कंस ने कारागृह पर और अधिक कड़ा पहरा लगा दिया। वह स्वयं भी आकर उसे देख जाता था। इस बार कंस ने जब देवकी को देखा, तब उसे देवकी अत्यंत तेजस्वी दिखाई दी। वह मन ही मन सोचने लगा, इससे पहले तो वो कभी भी इतनी तेजस्वी नहीं दिखाई दी। इस बार मेरे प्राण लेने वाला विष्णु ही देवकी के गर्भ में नहीं आया ना। इस विचार से वो मन ही मन बहुत घबरा गया। अब भगवान के प्रति अत्यधिक द्वेष रखने वाला कंस भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते सदैव श्री कृष्ण का ही विचार करने लगा। इस कारण उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा। उसे देवकी का होने वाला 8वां पुत्र और अपने वध का ही विचार सताने लगा। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इस तिथि को भगवान ने जन्म लेना निश्चित किया। भगवान के अवतारी जन्म का समय समीप आ गया था। श्री कृष्ण की अवतार धारणा से आनंद सर्वत्र विहार करने लगा। श्री कृष्ण के अवतार धारण की इस मंगल वार्ता की सुगंध आनंद ने वायुवेग से सर्वत्र फैला दी। संपूर्ण सृष्टि को और पंच तत्वों को भी असीम आनंद हुआ। इस आनंद वार्ता से काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन सभी पर हरि भक्ति का प्रभाव दिखाई दे रहा था। सभी जन स्वयं में निर्माण हुई मलिनता भूलकर शुद्ध अंतकरण से भगवान के अवतार धारण की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। अंतकरण शुद्ध होने पर जिस प्रकार उसमें भगवान का अस्तित्व निर्माण होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अवतार धारण से पहले काल, दिशा एवं पंचतत्व, इन सभी की समष्टि शुद्धि कैसे होने लगी, उसका सुंदर वर्णन अब हम सुनेंगे। उस समय पृथ्वी पर सर्वत्र अधर्म फैला होने से काल भी क्रोधित हो गया था। काल ने अपना रौद्र रूप दिखाना आरंभ किया। वह सब कुछ निगलने लगा था। जहां काल के लिए भी अधर्म असहनीय हो गया था, वहां फिर भगवान तो काल के परे है। भगवान को पृथ्वी पर अवतार धारण करना ही था, परंतु जब पवन वेग से विहार करने वाले आनंद ने काल को संकेत दिया, तो काल के ध्यान में आया कि अब स्वयं परिपूर्णतः भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हो रहे हैं। तब काल भी आनंद से भर गया। उसका रौद्र रूप शांत और मनोहर हो गया। समस्त सद्गुणों को धारण कर वो भगवान के स्वागत की तैयारी करने लगा। भगवान के स्वागत के लिए काल की तैयारी देखकर दसों दिशाएं भी आनंदित हो गई। कंस एवं अन्य दैत्यों के राज्य काल में त्राही त्राही हुई दसों दिशाएं अपने अपने अधिपति देवताओं सहित पराधीन हो गई थी। असुरों ने उन पर वर्चस्व स्थापित किया था। सुगंधित हवा के झोंकों से बहने वाली पवन भी वेग से बहने लगे और जाकर भगवान के अवतार धारण की आनंद वार्ता दसो दिशाओं को दे आई। वह वार्ता सुनकर सर्व दिशाएं अपने अपने अधिपति देवताओं सहित प्रसन्न हो गई। उन्होंने भगवान के आगमन के लिए अपने अपने प्रतिबंधित क्षेत्र खोल दिए। नराधम असुरों के अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वी अत्यंत दुखी हो गई थी। जब कृष्ण अवतरण की वार्ता आनंद ने पृथ्वी को दी, तब उसे अत्यंत आनंद हुआ। वैकुंठ में जाकर भगवान को सुनाई अपनी व्यथा और भगवान द्वारा की हुई आकाशवाणी, इनका उसे स्मरण हुआ। भगवान के अवतार धारण की तो वो अत्यंत व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही थी। जिस समय भगवान भूदेवी के निवास स्थान अर्थात पृथ्वी पर आने लगे, तब पृथ्वी माता को उस भूदेवी को अत्यंत अत्यंत आनंद हुआ। श्रीहरि के भक्तिमय स्मरण से अब वो संपूर्ण रूप से मंगलमय हो गई। श्रीहरि के सर्व मंगलमय चिन्ह उसने अपनी देह पर धारण किए। पृथ्वी के शहर गांव अत्यंत मंगलमय हो गए, आनंदी हो गए। भगवान के श्री चरण मुझ पर पड़ेंगे, ये मेरा परम सौभाग्य है। इस विचार से पृथ्वी माता आनंदी हो गई। पृथ्वी को ज्ञात ये आनंद वार्ता जल तत्व ने जब सुनी तो उसे भी आनंद हो गया। निर्मल हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए सभी नदियां, सरोवर, झरने भी निर्मल हो गए। श्री कृष्णावतार अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करेंगे, इस विचार से सभी को आनंद हुआ। इस भारत भूमि पर कभी न बुझने वाला अग्नि तत्व कौसादि असुरों के अत्याचारों से शांत होने लगा था। कौस के अत्याचारों के कारण यज्ञ याग, ब्राह्मणों के अग्निहोत्र इत्यादि सब कुछ बंद हो गया था। वायुवेग से बहने वाले आनंद ने धीरे से अग्नि देवता को स्पर्श करते हुए भगवान की अवतार धारणा का समाचार दिया। ये सुनकर अग्नि देवता भी प्रफुल्लित हो गए। श्री कृष्ण अवतार की कृपा से अग्नि तत्व भी प्रज्वलित हो गया। इसके पश्चात आनंद वायु तत्व की दिशा में विहार करते हुए आया। उसने भगवान के अवतार धारण की आनंद वार्ता वायु देवता के कान में धीरे से बताई। अब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के निमित्त से पवित्र एवं सुगंधित हवा अपने स्पर्श से लोगों को आनंदी करते हुए बहने लगी। उस समय वायु देवता विचार करने लगे, भला उनके मन में क्या विचार थे, ये हम अब प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। रामावतार के समय वायुपुत्र हनुमान जी ने श्री राम स्वरूप भगवान की जो सेवा की थी, उसे देखकर वायु देवता कृतार्थ हो गए थे। परंतु इस अवतार में वे स्वयं ही भगवान के कृष्णावतार की सेवा करेंगे, ऐसा विचार वे करने लगे। वायु देवता सोचने लगे कि आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर जब श्रम के पश्चात स्वेद बिंदु अर्थात पसीना आएगा, तब मैं भगवान के माथे पर आए रूपहले प्रतीत होने वाले स्वेद बिंदुओं को अत्यंत शीतल और मंद सुगंध युक्त पवन से शीघ्रता से सुखाऊंगा। श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन की इच्छा होगी तो उनके समष्टि रूप अर्थात विश्व की सेवा मुझे करनी चाहिए। इस विचार से तुरंत ही संपूर्ण विश्व को स्वच्छ शुद्ध एवं निर्मल प्राणवायु के स्रोत की आपूर्ति करते हुए वायु देवता भी भगवान के स्वागत समारोह का प्रतिनिधित्व करने लगी। भगवान के अवतार धारण की यह आनंद वार्ता जो सभी तक पहुंच चुकी थी, भला आकाश तक पहुंचे बिना कैसे रहेगी। आकाश ने भी ये आनंद वार्ता सुनी। अत्यंत आनंद से आकाश बोला, भगवान के विशालता और समता इन गुणों की मुझे उपमा दी जाती है, परंतु अब मेरे नीलवर्ण की उपमा जब भगवान के नीलवर्ण कांति को दी जाएगी तब मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, धन्य धन्य हो जाऊंगा। तदुपरांत आकाश ने आनंदोत्सव मनाना आरंभ किया। आकाश के तारे जगमगाने लगे। सर्व नक्षत्र ग्रह तारे शांत और निर्मल हो गए और वे भी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए सज्ज हो गए। इस प्रकार भगवान के अवतार धारण की व्याकुलता से काल दिशा पंच तत्वों सहित संपूर्ण सृष्टि ही भगवान के दिव्य आगमन के लिए अत्यंत आतुर हो गई थी। भगवान के लिए व्याकुल हुए वातावरण का हमारे अंतर्मन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हम भी अत्यंत आतुर हो गए हैं। उसी व्याकुलता में अब हम भगवान को आर्तता से पुकारेंगे, हे नाथ, हे प्रभु। हमारी ये आर्त प्रार्थना, हमारी विनती आप सुनिए भगवान। संपूर्ण सृष्टि के हृदय में वास करने वाले हे हृदयेश्वर, हे मोर मुकुट और पीताम्बर धारी भगवान, अनेक जन्मों से हमें केवल आपकी ही आस लगी है। इसका साक्षीदार है तारों से भरा ये गगन। प्रत्येक श्वास के साथ हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे गोविंद, आपके दर्शन के लिए हमारा रोम रोम आतुर है। हमारे नेत्र आपके दर्शन हेतु अधीर है। वे नेत्र भी अब आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं भगवान। भव बाधा और संकटों का नाश करने वाले हे भगवान, आपके दिव्य रूप का स्वागत करने का अधिकार आप ही हमें प्रदान करें। हमारे नयन रूपी पुजारी आपके श्री चरणों में शरणागत हैं। आप ही हमारे तन मन धन और प्राणों के स्वामी हैं। हे करुणाकर, अब आप शीघ्र प्रकट हो और हमें आपके दिव्य दर्शन दे। हे दयानिधे, इतनी कृपा करें। हे करुणाकर, हम पर इतनी कृपा करें। ऐसी आपके परम पावन श्री चरणों में प्रार्थना है।
त्रैलोक्य के सभी भक्तों की प्रार्थना साक्षात श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हुई। भगवान ने अब सभी को इस प्रार्थना का फल देना निश्चित किया। अब भगवान के अवतार धारण का समय समीप आ गया। श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आया। तब स्वर्ग में देवताओं की दुमदुबियां बजने लगी। सिद्ध एवं चारण स्तुतिगान करने लगे, किन्नर गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवी देवता और ऋषिगण आनंदित होकर पुष्प वर्षाओं करने लगे। जनार्दन के अवतार धारण का समय था मध्यरात्रि। सभी ओर अंधकार का साम्राज्य फैला था। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट हो रही थी। मूसलाधार वर्षा होने लगी और उसी समय सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के स्थान पर प्रकट हुए। पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्र का उदय हुआ हो ऐसा भगवान का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। कारागृह की उस अंधेरी कोठरी में भगवान के तेजस्वी अंग कांति के चैतन्यमय जगमगाहट से वसुदेव की नींद खुली। वसुदेव उठकर बैठ गए। उन्होंने देवकी के बगल में एक अद्भुत बालक देखा। उस अद्भुत बालक रूप में भगवान की मनमोहक छवि कैसी होगी, हम भी उनके भावपूर्ण दर्शन करेंगे। उस बालक के नेत्र कमल समान थे, उसके चार हाथ थे, उसने हाथों में शंख चक्र गदा ये उत्कृष्ट आयुध भी लिए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि चमक रहा था। उस बालक के मेघों समान सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर चमक रहा था। मूल्यवान नवरत्नों में से एक वैडूर्य मणि से जड़ित मुकुट और कुंडलों के तेज से उसके घने घुंघराले बाल चमक रहे थे। चमकता हुआ रत्न जड़ित कमर पट्टा, बाजुओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन उस बालक पर सुशोभित थे। उस अद्भुत बालक को देख वसुदेव की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कुछ क्षणों उपरांत वसुदेव ने पहचान लिया कि पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही परम परमेश्वर श्रीमन नारायण ही आए हैं। बाल भगवान की तेजोमय अंग कांति से कारागृह जगमगा रहा था। वसुदेव को भगवान का प्रभाव ज्ञात होने से उनका सब भय समाप्त हो गया। अपनी बुद्धि स्थिर कर उन्होंने परम पुरुष भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखा। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवकी के भी ध्यान में आया कि अपने पुत्र में पुरुषोत्तम के सभी लक्षण हैं। आरंभ में उसे कंस का विचार मन में आते ही थोड़ा भय लगा, परंतु बाद में अत्यंत पवित्र हास्य करते हुए वो भी बाल भगवान की स्तुति करने लगी। देवकी और वसुदेव का कितना परम भाग्य कि साक्षात भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया, उस विषय में हम समझ लेंगे। वसुदेव स्वयंभुव मन्वंतर में सूतपा नामक पुण्यशील प्रजापति थे। उनकी पत्नी थी पृश्नी। जब ब्रह्मदेव ने उन दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब उन दोनों ने इंद्रिय निग्रह कर घोर तपस्या की। मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान, कड़ी धूप कड़ाके की ठंडी इत्यादि सब कुछ सहन करते हुए तपस्या की। प्राणायाम से अपने मन के दोष धो डाले और भगवान के चरणों में चित्त एकाग्र किया। इस प्रकार अत्यंत ही कठोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। दोनों की श्रद्धा युक्त तपस्या और प्रेममय भक्ति से अपने हृदय में नित्य भगवान का ही चिंतन किया था, इसलिए भगवान उन दोनों पर प्रसन्न हो गए। भगवान ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो दोनों ने साक्षात भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। उस अनुसार तीसरे जन्म में पृष्णि और सूतपा ने देवकी और वसुदेव के रूप में जन्म लिया। भगवत कृपा से अब उन दोनों को अपने पूर्व जन्मों का और उस समय की तपस्या का स्मरण हुआ। भगवान के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वे दोनों भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। वसुदेव एवं देवकी के समान हम सभी भी अपने अंतर्मन में भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपार भक्ति अनुभव करते हुए भगवान की स्तुति करेंगे। भक्ति से ओतप्रोत प्रत्येक शब्द स्तुति रूप में भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। श्री कृष्ण जन्म का दिव्य आनंद हम सब साक्षात अनुभव करेंगे, जिसका आदि अंत नहीं, जन्म मरण नहीं, जो अजन्मा है, ऐसे भगवान ने जन्म लिया। ये एक ऐसी दैवी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई। मध्य रात्रि के अंधकार के समय कारागृह में साक्षात प्रकाशमय महाविष्णु ने अवतार धारण किया। परम भाग्यशाली देवकी के हृदय में वास करने वाले वो परम परमेश्वर भगवान परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम इस वचन का पालन करने हेतु सभी के कल्याण के लिए माँ देवकी की कोख में आए। देवकी को किसी भी प्रकार की प्रसव वेदना न देते हुए उसकी देह रूपी पालखी में बैठकर ये अनादि अनंत भगवान इस भूतल पर प्रकट हुए। देवता शंखनाद करने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे। उन स्वरों से उन्हें हो रहा परमानंद ही मानो प्रकट होने लगा। साक्षात जगन्नायक का वो चतुर्भुज बाल रूप देख देवकी और वसुदेव का अंतकरण परम भक्ति से भर गया। देवकी और वसुदेव का रोम रोम हर्षित हो उठा। उनका अष्ट सात्विक भाव जागृत हुआ। सोहम सोहम नाथ करते हुए भगवान देवकी के सामने शिशु रूप में प्रकट हुए। कारागृह के बाहर भी सर्वत्र के वातावरण में दैवी परिवर्तन हुआ। शीतल पवन बहने लगी। जीव सृष्टि भगवान के आगमन से अत्यंत आनंदित होकर झूमने लगी, आनंद से भगवान का स्वागत करने लगी। मानो भगवान के आगमन से भक्ति रंग में ही रंग गई हो। सृष्टि का वो दिव्य आनंद हम साक्षात अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण जन्म का दिव्य आनंद देवकी और वसुदेव सहित संपूर्ण सृष्टि अनुभव कर रही थी। तदुपरांत देवकी ने कहा, हे प्रभु, हे परम पुरुष भगवन, आप मेरे गर्भ में रहे ये आपकी अद्भुत लीला ही तो है। हे प्रभु, आप भक्तों का भय हरण करते हैं। दुष्ट कंस के कारण हम दोनों भयभीत हैं, उससे हमारी रक्षा करें। हे भगवन, आपके इस चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन योगियों को होते हैं। भौतिक शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले मनुष्य के सामने आप ये प्रकट न करें। हे मधुसूदन, आपका जन्म हुआ ये बात उस पापी कंस को पता नहीं चलनी चाहिए। हे बाल भगवन, तुम्हारे लिए मैं कंस से बहुत घबरा रही हूँ। मेरा धीरज अब समाप्त हो रहा है। हे विश्वात्मन, आपके इस शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित चतुर्भुज अलौकिक रूप को त्याग दे। हे प्रभु, हे परम पुरुष भगवन, इस कंस रूपी संकट से बाहर निकलने का आप ही हमें मार्ग दिखाएं। देवकी की ये भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपनी योग माया से तुरंत ही बालक का रूप धारण किया। भगवान का वो चतुर्भुज रूप द्विभुज रूप में अर्थात दो हाथ वाले रूप में परिवर्तित हुआ। अभी जन्मे उस नवजात शिशु का वो अत्यंत मोहक मनोहारी बाल रूप देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। उसके आंचल से दूध छलकने लगा। उसने उस शिशु को साक्षात परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मानो सभी बंधन टूटकर मोक्ष ही उसके हाथों में आ गया हो। अब तक भगवान की ये दिव्य लीला हम सभी ने अनुभव की। जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव थे, परंतु उनका पालन करने वाले माता पिता नंद राजा और यशोदा थे। इसके पीछे भगवान की कैसी लीला होगी, उसका रहस्य अब हम समझ लेंगे। नंद पहले अष्टवसुओं में से एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा की तपस्या से भगवान श्री विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उन दोनों से तपस्या का कारण पूछा। तब वे दोनों बोले, हे भगवान, आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले और पुत्र रूप में आपकी सेवा और भक्ति हमसे करवा ले, यही हमारी एकमेव इच्छा है। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को वैसे वरदान दिया। आगे वही परम यशस्वी द्रोण ने वृज में नंद रूप में जन्म लिया और वही धरा यशोदा हुई। अब भगवान को उन दोनों को दिया आशीर्वचन पूर्ण करना था। भगवान की वो दिव्य लीला सभी अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ भगवान का जन्म हुआ और उधर गोकुल में गोपरानी यशोदा को प्रसव पीड़ा होने लगी। यशोदा को लेकर रोहिणी और यशोदा की कुछ सेविकाएं महल के प्रसव गृह में आई। मध्यरात्रि के प्रहर में यशोदा के गर्भ से बालिका रूप में साक्षात योगमाया प्रकट हुई। मानो शिशु रूपी परब्रह्म नंद महल के प्रसव कक्ष के निकट पहुंचने के लिए वहां उनका मार्ग प्रशस्त करने हेतु योगमाया उनसे पहले ही उपस्थित थी। योग माया ने वहां उपस्थित सभी पर अपने प्रभाव से माया का आवरण डाल दिया। उसके कारण नंदरानी यशोदा स्तब्ध हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे मूर्छित हो। वसुदेव पत्नी रोहिणी, जो गोकुल में नंद राजा के यहाँ रहती थी, वो और अन्य सभी सेविकाएं भी निद्रा देवी के अधीन हो गई। उन्हें अपने आसपास के विश्व का और स्वयं का भान नहीं था। उसके उपरांत योग माया ने नंद राजा पर भी अपना प्रभाव डाला। इस प्रकार योग माया ने बालरूपी परब्रह्म के आगमन की सभी तैयारियां कर ली थी। भगवान के आशीर्वचनानुसार उन्हें अब नंद राजा और माता यशोदा के पास जाना था। भगवान ने वसुदेव को प्रेरणा दी। ये आठवां पुत्र यहाँ कौस के बंदी गृह में सुरक्षित नहीं, इसलिए उसे नंद राजा के पास भेजे। फिर वसुदेव ने निश्चय किया कि इस बालक को बंदी गृह से बाहर ले जाना होगा। परिस्थिति कठिन थी, परंतु जो भी हो, इस बालक को कंस से बहुत दूर ले जाना था और किसी को कुछ पता चलने से पहले ले जाना आवश्यक था। वसुदेव देवकी की भगवान पर श्रद्धा दृढ़ थी, परंतु वे कुछ भी करने में असमर्थ थे, इसलिए बाल भगवान ही लीला रचने लगे। भगवान की आज्ञा से योग माया ने कारागृह के द्वारपाल और समस्त नगरवासियों के सर्व इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। योग माया की प्रभाव से सभी गहरी नींद सो गए। कारागृह के सभी द्वार बंद थे, मोटी मोटी जंजीरों से बंधे थे, उन पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, इसलिए बाहर जाना बहुत कठिन था। बाल भगवान वसुदेव को आंतरिक प्रेरणा देते हुए एक एक कृति करवाने लगे। वसुदेव ने उस नवजात शिशु को एक मुलायम कपड़े पर रखकर टोकरी में रखा। वह टोकरी हाथ में लेकर वसुदेव गोकुल के राजा नंद के घर निकल पड़े। वसुदेव बाल भगवान को लेकर जैसे जैसे कारागृह के द्वार की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे द्वार पर बंधी लोहे की मोटी मोटी जंजीरें अपने आप टूटकर गिरने लगी। ताले खुल गए। किसी को भी बिना पता चले देवी योगमाया ने वसुदेव को बाल भगवान सहित बड़ी सहजता से कारागृह से बाहर निकाला। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, मेघ गरज रहे थे, परंतु किसी भी बात का विचार न कर भगवान की प्रेरणा से वसुदेव गोकुल के मार्ग पर चलते रहे। भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा रखकर वसुदेव उस काली अंधेरी रात में निर्भयता से आगे बढ़ रहे थे। भगवान ही उस अंधेरे में उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। बाल भगवान को लेकर उबड़ खाबड़ मार्ग मार्ग के चढ़ाव उतार पर वसुदेव जी सहजता से जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान की अवतारी लीला ही उनकी सहायता के लिए मानो गलीचे बिछा कर उनका मार्ग सहज सुलभ कर रही हो। मुख में अमृतमय प्रभु नाम लेते हुए वसुदेव नंदराज के घर की ओर निकल पड़े। टोकरी में लेटे नवजात शिशु के रूप में प्रभु को जलधाराओं से कष्ट न हो, इसलिए श्री विष्णु के परम भक्त शेषनाग
अपने प्रभु की सेवा के लिए दौड़े आए। उन्होंने सूक्ष्म रूप से अपना फन प्रभु पर फैला दिया। अब यमुना पार कर दूसरे तट पर जाना था। यमुना तो दुगुने प्रवाह से बह रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, इसलिए यमुना का जलस्तर बढ़ गया था। वसुदेव ने बाल भगवान की वो टोकरी और ऊपर पकड़ी। यमुना पार करते समय नाक तक पानी आ गया था। तभी एकाएक यमुना की एक बड़ी लहर ऊंची उठी। बाल भगवान ने अब एक और लीला की। बाल भगवान ने धीरे से अपने पैर उस टोकरी से बाहर निकाले। यमुना की ऊंची उठती लहर का बाल भगवान के कोमल चरण को स्पर्श हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो यमुना ने भगवान के नन्हे चरण का चुंबन लिया हो। प्रभु का चरण स्पर्श होते ही यमुना नदी कृतार्थ हो गई। वह दो भागों में विभाजित हो गई और उसने बाल भगवान के साथ आगे जाने के लिए वसुदेव को राह बना दी। भगवान की उस अगाध लीला को अनुभव करते हुए वसुदेव बाल भगवान के साथ सहजता से नदी पार कर गए। वसुदेव के सिर पर टोकरी में विराजमान परब्रह्म छोटा सा बाल रूप धारण कर नंद के घर पहुंचे। पूरा गोकुल निद्राधीन था। नंद के पास पहुंचकर वसुदेव ने देखा नंद, यशोदा, रोहिणी सभी गहरी नींद सोए हुए हैं। योग माया के प्रभाव के कारण दिव्य मानव रूप धारण किए परब्रह्म को प्रसव गृह में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा। परंतु भगवान के इस बाल रूप का आगमन होते ही संपूर्ण प्रसव गृह में एक अपूर्व और चिन्मय ऐसे परम चैतन्य रस से वो भर गया। वहां का प्रत्येक अणु परमाणु चैतन्य रस में मग्न हो गया। प्रसव पीड़ा के कारण मूर्छित यशोदा और निद्राधीन रोहिणी एवं परिचारिकाएं उस परम चैतन्य के स्पर्श से भाव समाधि में थी, अर्थात उनकी निद्रा का रूपांतर भाव समाधि में हो गया। उस परम चैतन्य का प्रभाव समस्त गोकुल में फैल गया। नंद राजा भी भाव समाधि में चले गए। भगवान का ये शिशु रूप अत्यंत चमत्कारी ढंग से गोकुल धाम पहुंच गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। वसुदेव यशोदा के पास गए। उन्होंने उस बाल रूप भगवान को यशोदा के पास सुला दिया। इस प्रकार शिशु रूप में सच्चिदानंद श्रीहरि विष्णु सीधे यशोदा की गोद में पहुंच गए। तत्पश्चात यशोदा के पास सोई बालिका रूपी योग माया को लेकर वसुदेव मथुरा के कारागृह लौट आए। उस बालिका को देवकी की गोद में देकर वसुदेव ने पुनः अपने पैरों में बेड़ियां लगाई, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर वे भी सो गए। जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे भगवान के चैतन्यमय तेजयुक्त अवतरण से सर्व बाधाएं सहज दूर हो गई थी। सब कुछ यथावत होने के कुछ ही समय पश्चात योग माया ने सर्वप्रथम रोहिणी पर से अपना प्रभाव हटाया। इससे रोहिणी जाग गई। उसने जब आंखें खोली तब उसे अत्यंत विलोभनीय दृश्य दिखाई दिया। उसके नेत्रों के सामने चिरंतन आनंद रूपी सरोवर था। उसमें एक नीलकमल कुछ ही समय पूर्व खिला था। उसकी परम दिव्य सुगंध सर्वत्र फैली थी। उस नीलकमल की ओर देखते हुए रोहिणी को लगा, ऐसे अद्भुत एवं अद्वितीय नीलकमल की उत्पत्ति आज तक किसी सरोवर में नहीं हुई होगी। पवन ने उसकी दिव्य सुगंध का स्पर्श अब तक कभी अनुभव नहीं किया होगा। ऐसे कमल को अब तक कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा ये दिव्य अनुपम और अत्यंत सुंदर नीलकमल है। कुछ क्षण उपरांत वो दृश्य रोहिणी के आंखों के सामने से अदृश्य हो गया। रोहिणी भान में लौटी। उसने देखा कि एक दिव्य शिशु यशोदा के पास निद्राधीन है। वह शिशु मनमोहक एवं अत्यंत सुंदर है। भगवान के अवतरण का ये अलौकिक माधुर्य भगवान के अन्य किसी भी अवतार के भक्तों ने अनुभव नहीं किया होगा। वो परम सौभाग्य रोहिणी को मिला। रोहिणी के उपरांत यशोदा की अन्य सेविकाएं भी जाग गई। उन्होंने यशोदा के नवजात पुत्र को देखा तो बस देखती ही रह गई। वे सभी मंत्रमुग्ध होकर बिना पलके झपकाए एकटक इंद्रनील मणि की भांति तेजोमय कांति वाले उस शिशु को निहारने लगी। वे सभी उस दृश्य में इतनी खो गई कि उस क्षण उनका क्या कर्तव्य है इसका भी उन्हें भान न रहा। ऐसे लगा मानो भगवान का वो परम दिव्य रूप देखकर उनकी पुनः भाव समाधि ही लग गई हो। वे भाव समाधि में होने से शिशु के क्रंदन पर भी स्तब्ध खड़ी रही। वे सभी अत्यधिक आनंद से स्तंभित हो गई थी। अंततः उन सभी को भान में लाने के लिए पुरुषोत्तम भगवान को अपनी लीला दिखानी पड़ी। अब सर्वांतर्यामी भगवान रोहिणी के मुख से बोले, अरे तुम सभी क्या ऐसे देखती ही रहोगी? कोई जाकर गोपराज नंद जी को ये शुभ समाचार तो सुनाओ। सचमुच यदि अंतर्यामी भगवान रोहिणी के मुख से बोले न होते तो सभी सेविकाएं और न जाने कितने समय तक उसी भाव समाधि में बनी रहती। ये तो श्रीहरि ही जान सकते हैं, इसलिए कि स्वयं रोहिणी भी उस परमोच्च आनंद में भाव समाधिस्थ थी। इस कारण उनके कुछ करने की और बोलने की शक्ति भी सर्वथा विलुप्त हो गई थी। रोहिणी की उस आज्ञा से अब तक सेविकाओं के अंतकरण में उमड़ रहे आनंद स्रोत के रंग अब बाहर निकलकर सर्वत्र फैलने लगे। वे आनंद विभोर होकर एक दूसरे से बातें करने लगी। अगले क्षण संपूर्ण प्रसव गृह भाव समाधि से जाकर पूर्णानंद से भर गया। एक सेविका गोपराज नंद जी को सूचित करने के साथ साथ चहकते हुए संपूर्ण गोकुल में ये शुभ समाचार पहुंचाने दौड़ी। इसके साथ ही अन्य सभी सेविकाएं भी अपने अपने कार्य के लिए आनंद के साथ दौड़ पड़ी। इस वृत्तांत के चलते गोपरानी यशोदा अब तक भाव समाधि में ही थी। भगवान ने उन्हें ऐसी भाव समाधि में रखा था कि उसका वर्णन करना भी शब्दों के परे है। यशोदा के घर
पुत्र रत्न के जन्म लेने का समाचार मिलते ही गोकुल की समस्त महिलाएं नंद भवन के प्रांगण में एकत्र हो गई। सभी हर्षोल्लासित थे। उनके हर्षोल्लासित स्वर से संपूर्ण महल ही निनादित हो उठा। कुछ ही समय में गोपरानी यशोदा की भाव समाधि भंग हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। फिर कुछ क्षणों पश्चात उन्हें ध्यान में आया कि उन्होंने एक बालक को जन्म दिया है। अपने नवजात शिशु पर दृष्टि डालते ही उनका हृदय वात्सल्य से भर आया। उनके अंतर में समाहित वो वात्सल्य उनके नेत्रों से आनंदाश्रु बनकर बहने लगा। भाव विभोर यशोदा अपने पुत्र के सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गई। उनके नेत्रों में झिलमिलाते आनंदाश्रु पुष्प मोती की भांति शिशु की देह पर टप टप करते गिर रहे थे। इसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने निर्मल मोतियों की माला ही धारण कर ली है। यशोदा के घर प्रकट हुए उस शिशु रूपी भगवान के चरणों में मानो निर्मल एवं वात्सल्यमय आनंदाश्रुओं की माला समर्पित हुई। फिर उन्हें स्तन दुग्ध का भोग समर्पित किया गया। ये सर्वथा उचित ही था क्योंकि भगवान की आराधना करते समय प्रथम पुष्प समर्पित करने के उपरांत भोग लगाया जाता है। इधर गोपराजा नंद जी को पुत्र जन्म का शुभ संदेश देने के लिए सेविका गई थी। उस समय नंदराज प्रतिदिन की भांति नारायण के स्मरण में तल्लीन थे। नंदराजा को देखते ही सेविका बोली, हे नंदराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वह समाचार सुनते ही गोपर राजा को ऐसा लगा जैसे वे आनंद के महासागर में गोते लगा रहे हैं। वे उसी भाव विश्व में खो गए। उन्हें बाह्य जगत का विस्मरण हो गया। वे अपने भाव विश्व में रममाण हो गए। फिर एकाएक उनके अंतर में समाहित एक सुंदर पूर्व स्मृति मानस पटल पर उभरी। वह पूर्व स्मृति इस प्रकार थी। नंद बाबा यशोदा से कह रहे थे, यशोदा, जब मैं पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञानुष्ठान के लिए बैठता था तब मेरे मन में प्रश्न उठता कि त्रिलोक में मेरे इष्टदेव नारायण से भी अधिक सुंदर कौन हो सकता है। ये सर्वथा असंभव है, परंतु उसी समय नारायण से भी अनंत असीम सुंदर बालक की मूर्ति मेरे चित्त पर अंकित हो गई। वह अलौकिक बालक मुझे तुम्हारी गोद में खेलता हुआ दिखाई दिया। श्याम वर्ण और सुंदर लोचन वाले उस नयन मनोहारी बालक को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाता। उस पूर्व स्मृति का अनुभव करते करते नंदराज भी भाव समाधि में चले गए। उस पूर्व स्मृति के माध्यम से उत्पन्न भाव स्रोत के अद्भुत रस का वे प्राशन करने लगे। नंद बाबा के आसपास बने भाव मंडल में सेविका भी समाहित हो गई। वह तो ये भूल भी गई थी कि वे नंद बाबा को बुलाने आई थी। उसे भी सौंदर्य निधि यशोदा नंदन के रूप का स्मरण होने लगा और उसकी पुनः भाव समाधि लग गई। वह सेविका और नंद बाबा कुछ समय तक उसी भाव समाधि में थे। फिर भगवान की प्रेरणा से नंद बाबा के कानों में
उस सेविका के कुछ समय पूर्व कहे शब्द गूंजने लगे। हे नंदराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और नंदराज भाव समाधि से जाग गए। उन्होंने अपनी आंखें खोली। क्षण भर का भी विलंब किए बिना वे अपने महल की ओर निकल पड़े। उनके पीछे वो सेविका भी दौड़ती गई। महल की ओर जाते जाते नंदराज विचार कर रहे थे, सचमुच मैंने अभी जो श्याम वर्ण का बालक देखा, क्या वही यशोदा के गर्भ से जन्मा होगा? इसी विचार में उनके हृदय में उमड़ आए उस आनंद के प्रवाह को अपने साथ लेकर नंद बाबा लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। नंद बाबा अपने पुत्र के मुख दर्शन के लिए व्याकुल थे। उनके मन में पुत्र के मुखावलोकन की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु उन्हें इसका अवसर नहीं मिला। वास्तव में महल का द्वार तो खुला था, किंतु यशोदा के महल में गोपियों की भीड़ थी, इस कारण अंदर प्रवेश का मार्ग बंद था। नंद बाबा के घर पुत्र रत्न होने से अत्यधिक आनंद के कारण बावरी गोपियों को पता ही नहीं चला कि नंद बाबा वहां पधारे हैं। नंद बाबा को अंदर प्रवेश करने का मार्ग नहीं मिल रहा था और अब तो पुत्र दर्शन का धीरज भी छूट रहा था। तभी वहां खड़ी गोपियों के मध्य की एक दरार से नंदराज को अपना बालक स्पष्ट दिखाई दिया। अरे, ये तो वही बालक है, एकदम वही है। मैंने जो देखा वही ये श्यामवर्ण बालक है। उतने में ही गोपियों की हलचल के कारण वो छोटी सी दरार भी अब बंद हो गई और साथ ही वो दृश्य दिखाई देना भी बंद हो गया। उस दरार से नंदराज की ओर जो परम चैतन्य प्रक्षेपित हुआ था, उसके कारण अब नंदराज के नेत्र भी अपने आप बंद होने लगे। नंद बाबा अब उस बालक को अपने अंतर से अनुभव करने लगे। अब नंद महल में गोकुलवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्राह्मण भी आ गए, ढोल नगाड़ों का दल भी आ पहुंचा। ढोल वादक ने अपनी ढोलक पर थपकी मारी। शहनाई और चौगड़े ने मधुर से भी मधुर रागिनी की तान छेड़ दी। विविध मंगल वाद्य बजने लगे। नंद महल की रत्न जड़ित दीवारों, छत और खंभों को निनादित करते हुए मंगल वाद्यों की वो मंजुल ध्वनि संपूर्ण ब्रज में गूंजने लगी। सभी आनंद से और गदगद कंठ से गाने नाचने लगे। हर्षोल्लासित गोकुल के ग्वालों के सुरीले गीत गगन तक ही सीमित नहीं थे, अपितु त्रिभुवन में भी गूंजने लगे। हम भी गोप गोपियां बनकर श्री कृष्ण जन्म के उस उत्सव का दिव्य आनंद प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। उन दिव्य क्षणों की प्रत्यक्ष प्रचिति लेंगे। उस दिव्य आनंदमय क्षणों के साक्षीदार बनेंगे।
नंद राजा के घर पुत्र के जन्म लेने का समाचार सुनकर सभी गोकुलवासियों को बहुत आनंद हुआ। ब्रज राजा का ये वंशदीप मानव ब्रजवासियों के लिए आधार स्तंभ था। हर्षित हुए गोकुलवासियों ने नंद के इस नंदन का जन्मोत्सव अत्यंत आनंद से मनाने की ठान ली। श्री कृष्ण जन्मोत्सव गोकुल में कैसे मनाया गया, वो अब हम सभी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। आइए, हम सब द्वापर युग के गोकुल में चलेंगे। सभी गोकुलवासी
ये आनंदोत्सव मनाने के लिए उत्साह से तैयारी कर रहे हैं। गोकुलवासियों ने अपने घर आंगन स्वच्छ किए, गेरू से रंगाई पुताई की, घर के सामने रंगोली बनाई, ध्वज पताकाए, फूलों की माला और बंधनवार से द्वार सजाए हैं। गाय, बैल और बछड़ों के शरीर, इनके ऊपर हल्दी तेल का लेप लगाकर गेरू से रंगा, साथ ही मोरपंख, फूलों का हार, विविध प्रकार के सुंदर वस्त्र और सोने की मालाओं से सजाया। पुत्र जन्म निमित्त ब्राह्मण मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। पौराणिक वंश का वर्णन करने वाले एवं स्तुति पाठक दिव्य स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे। सभी गोप गोपी बहुमूल्य वस्त्र अलंकार धारण कर आभूषण और भेंट वस्तुओं से भरी थालियां हाथ में लेकर नंद के घर की ओर उत्साह से जा रहे थे। यशोदा के तेजस्वी बालक का दिव्य रूप देखकर सभी को अत्यंत आनंद हुआ। प्रथम दर्शन के समय ही बाल भगवान ने सभी का मन और चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यशोदा की गोद में सभी दृष्टि से सुंदर बालकृष्ण के दर्शन से गोप गोपी आनंद विभोर होकर उसे अनंत अनंत आशीर्वाद देने लगे। नंद राजा भी अत्यंत उदार थे। उन्होंने गोप गोपियों को वस्त्र अलंकार और गौए दी, अनेक दान दिए। बाल भगवान का नंद के उस पुत्र का रूप सुंदर और आकर्षक था। नामकरण समारोह के समय गर्ग ऋषि ने सभी का चित्त आकर्षित कर लेने के कारण बालक का नामकरण कृष्ण किया। उस दिन से नंद का गोकुल हर प्रकार से समृद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वो निवास था, इसलिए भगवान के स्वाभाविक गुणों के परिणाम के रूप में वहां लक्ष्मी का भी आगमन हो गया। जहां श्री वही लक्ष्मी, इस अनुसार वहां साक्षात लक्ष्मी निवास करने लगी। इस भक्ति सत्संग के माध्यम से आज हमने साक्षात भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला अनुभव की। भगवान की जन्मलीला के विषय में दैवीय रहस्य भी हमारे सामने उजागर हुए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो द्वापर युग में साक्षात श्री कृष्ण की जन्मलीला का दैवीय अनुभव हम सभी ने इस क्षण लिया है। भगवान की इस दिव्य जन्मलीला से हमें ध्यान में आता है कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए साधन वस्तु उपयोगी नहीं, सागर में ज्वार भाटा आए समान अंतकरण में भक्ति भाव उफन कर आना चाहिए। ये भक्ति भाव नंद यशोदा के हृदय में था, इसलिए कृष्ण परमात्मा उनका आत्मज अर्थात उन्होंने जन्म न दिया हो तब भी उनका पुत्र बन गया। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये इससे प्रत्यक्ष अनुभव करने मिलता है। सभी वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं वे श्रीहरि नंदराज और यशोदा के कान्हा बनकर ब्रजभूमि में रहने लगे। साक्षात जगत पिता परम परमात्मा अब उनके पुत्र हो गए। नंद यशोदा सहित सभी गोप गोपियाँ बाल भगवान पर अपना प्रेम न्यौछावर करने लगे। साक्षात श्रीहरि अपने अंश स्वरूप बलराम सहित गोकुल में रहकर नंद यशोदा और गोप गोपियों को अपनी बाल लीलाओं से आनंदित करने लगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त हम सभी संपूर्ण रूप से श्री कृष्णमय होने का भक्तिमय निर्धार करेंगे। श्री कृष्ण का सर्वव्यापी और आनंदमय तत्व प्रत्येक क्षण अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण तत्व को रोम रोम में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण के दिव्य अवतरण का प्रसंग हमने अनुभव किया। अब श्री कृष्ण परमात्मा का वो अवतरण हम सभी के हृदय में होने के लिए हम अपने हृदय मंदिर को सुशोभित करेंगे। आज के सत्संग के समापन से पहले उस गोविंद को जन्माष्टमी निमित्त हम सभी के अंतर में ही विराजमान होने के लिए आर्तता से प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को भाव भक्ति रूपी पुष्पों से सजाकर भगवान के उस परम कल्याणकारी रूप का मनोभाव से स्वागत करेंगे। हे नंदनंदन, हे कृष्णा, श्रावण कृष्ण अष्टमी को पुनः एक बार आपका दिव्य अवतरण होने वाला है। आपने ही निर्माण किए इस भूतल पर हम आपके भक्त आपका स्वागत करते हैं भगवान। हे देवकी नंदन, हम सभी भक्तजनों के हृदय में भी आपका भक्तिपूर्ण स्वागत है। हे गोविंदा, हम अपने हृदय के भक्ति सुमनों का वर्षाव करते हुए आपका स्वागत करते हैं। आपके दिव्य पदचिन्ह हमारे हृदय में उभरने दे भगवान। हे यशोदानंदन, हे गोपराज कुमार, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका भक्तिपूर्ण स्वागत है। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।